स्टेशन है जो सर्व पूजियम बताया इसी के लिए उद्देश्य करके बताया। मनमना भव और भक्त मनमना जो है ये कृष्ण में चित्त लगाओ, लगाते तो ब्रह्मा इत्यादि भी गुरु प्रहलाद भी लगा रहे हैं, हनुमान जी भी लगा रहे हैं कृष्ण में, मनमना भव हो रहे हैं, सब लोग श्रद्धालु भी लगा रहे हैं, मैया भी तन मन में लगा रखा है, किंतु सर्वाधिक जो मन मना भाव है वो गोपियों में ही प्रदर्शित होता है। सबके लिए जो परम पूज्य है ये गोपी प्रेम के लिए ही सर्वोच्च, इसलिए ये सबसे पूज्यतम उपदेश गीता का है, किंतु बतलाया नहीं किया, यतन देकर के उद्देश्य किया, और जिसको जैसा समझना अपना अधिकार से समझे, किंतु अंतिम तक यही सबसे दूर रहस्य है। ये ब्रज कर्म में भी गोपियों का कृष्ण के प्रति ये सब गुण इसीलिए गोपियों की वंदना और श्रीमती राजा की वंदना शिव स्थान होती है। राधा कृष्ण लीला ये अति सुलभ दास भास्कर इत्यादि स्वामी नारायण दोष सब एक शक्ति बने बिहार अधिकार, केवल मात्र शक्तियों का ही इस क्रिया का अधिकार है और किसी का भी अधिकार नहीं है। शक्ति हल के भय एक बिहार शक्तियों से इन लीलाओं का विस्तार है। उन लोगों ने अभी तक जो पाठ इत्यादि प्रवचन होते हैं उन्होंने गौरी वर्णन इन सब अध्याय को छोड़ देते हैं, हमने कभी नहीं सुना कि गुरु जी को भी और हम लोग प्रसन्न अवस्था ही इसको कह रहे हैं, किंतु भाई खूब सावधानी से सुनना, कई सर्दिया भावना आ जाए, काम का भावना उसमें आए, काम और प्रेम दोनों में कुछ समता है, इसलिए बहुत से लोग इसको ऐसा ही समझ लेते हैं, इसलिए खूब सावधानी से थोड़ा सा सुनना और सुन ही लेना केवल, यदि लोभ है तो आगे बढ़ना और लोभ नहीं है तो उसको अभी अध्याय को बंद करके ही रखना। जिन लोगों का लोभ इसमें है या किसी को अभी लोभ के होने के अभी आसार हैं वो लोग सुन करके इसको लोग कुछ हो जाए, ये चैतन्य चरितामृत का यही उद्देश्य है। सखियों से ही इस लीला का विस्तार है, सखी बिना ये लीला पुष्टि नहीं, सखियां न रहे तो इस लीला की पुष्टि नहीं हो सकती। सखी लीला विस्तार या सखी आश्रय, सखियाँ ही इस लीला का विस्तार करती हैं और वही इसका आस्वादन करती हैं। कैसे ये सब दूसरे रूप से देखने से तब पता चले, जबकि श्रवण करने में भक्तों को साधकों को इतना आनंद होता है तो जो लोग भावुक हैं रसिक हैं उन लोगों को कितना आनंद होगा इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए चैतन्य चैतन्य या हमारे गोस्वामियों के जितने भी ग्रंथ हैं कितने अधिक प्राणों से भी अधिक हुए, ऐसी संपत्ति किसी भी संप्रदाय में नहीं होती। सखी बिना एक लीला अन्य नहीं गति, सखी भावे जे करे तार अनुगति, राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए से साध पाई से आर नहीं हो पाए। सखियों के बिना इस लीला में किसी का भी अधिकार नहीं, श्रोताओं में भी जिन लोगों को थोड़ा सा लोभ हो गया है उन्हीं लोगों को ये सुनने का भी अधिकार है, दूसरों को सुनने का भी अधिकार है। तो जो लोग सखियों के भावों के अनुसार में अनुगति करते हैं, अनुगति करते हैं मैंने अनुगमन करते हैं,
राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए, उसी को पा सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि शाम को या रात में कुंज में रह जाए और मर जाएंगे वो लीला पाल लेंगे, इतना सहज नहीं है कि मरने से उसको पाल लेंगे। सही साथ कठिन साधन करना पड़ेगा। वैदिक भक्ति में जब इतना साधन करना पड़ता है तो इसके लिए उससे लाख गुण अधिक साधन कठोर साधन करना पड़ेगा। जैसे हमारे रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि साधन करते हैं। नानी जी कैसे साधन करते हैं? खाना पीना कुछ नहीं, शरीर में कोल हार लग गया है। महाप्रभु जी के पास में कोई गया वृंदावन से, रूप सनातन कैसे भजन करते हैं, कैसे रहते हैं, बिना नमक की माँ धोकरी ले करके रोटी सूखी रोटी, या कभी चबेना तो ही वो भी मना, इस प्रकार से रहते हैं। रहने का कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी स्थान नहीं, किसी के देने पर भी कुछ नहीं खाते। जिसका पति कहीं चला गया हो उसको त्याग करके और ऐसी स्त्री को कोई खाने के लिए देगा तो खाएगी, वो तो विरह में तड़प रही है। ऐसे ही भजन के लिए जो तड़प रहे हैं उनको कुछ देने से या पाने से पहनाने से वो खाएंगे पिएंगे और पहनेंगे, बड़ा इसलिए उनका वैराग्य सहज सरल होता है, स्वाभाविक होता है। वो लोग बिना नमक की रोटी, कभी टेस्ट के लिए नमक नहीं लिया, और जो कुछ माधुकरी सुखनी सुखी मिल गई वो ग्रहण की, और डोर कॉफी और करंगा, करंगा माने मट्टी का एक बर्तन, बस पानी के लिए रखते थे, और कुछ भी साथ नहीं, कोई भी संपत्ति नहीं। बनु जंगलों में एक एक पेड़ के नीचे एक एक दिन रहते हैं और हाहाकार करते रहते हैं। सर्दियों के दिन में भी कोई रजाई कंबल कुछ नहीं, यदि अधिक ठंड लगी तो पत्तों को जला लिया बस, ऐसा कठोर रूप में। और सोते नहीं थे, कभी सोया तो 10-20 मिनट सो लिया, कभी उठी नहीं। छपान साठ दंड का एक दिन रात
जाने ना रहा
था, और 56 दंड तक हाथ उतार करते रहते थे और 4 दंड बच गया। और वो भी कभी स्वप्न में राधा कृष्ण के लीलाओं को देख रहे हैं और कभी वो भी मना, कभी कभी वो भी। ऐसा यदि कोई साधन करेगा तब तो फिर ये होगा, नहीं तो जिस रूप में हम लोग चल रहे हैं ऐसे तो करोड़ जन्म में भी कुछ होगा कि नहीं होगा कोई चीज। ये तो वैधि भक्ति मार्ग में भी इसे अधिक कठोर रूप में साधन का जाएगा। दिन रात नाम 3 लाख, 3 लाख नहीं हुआ, अच्छा 2 लाख सही, 2 लाख सही नहीं, अच्छा 1 लाख भी मनो कोई पूछेगा तो 50,000 भी होता है कि नहीं। और यदि ये पूछा जाए, अच्छा एकदम मन लगा करके आरती के सहित हृदय के सहित कितना नाम हुआ, तो 1 भी हुआ कि नहीं। सदाई नमा परा प्रभु नमा भास, सदाई नमा नमापराध और नमाभास से ये नहीं होगा। प्रेम में पिरोया हुआ यदि नाम होगा, प्रेम माला गाथी वो ऐसा यदि हो तब तो उससे होगा कुछ। अब विचार करके देखिए जो हम लोग दिन रात में कितना सोते हैं, खाने में और स्नान में भोजन में बात बतंगड़ करने में कितना हमारा समय चला, भजन हम लोग कितना करते हैं। दिन रात जो यदि सो भी गए तो वही चिंता, वही स्वप्न देख रहे हैं। कोई एक महात्मा कह रहे थे, मैंने कहा जैसे आप तो वन जंगल में भजन करते हैं, कैसे भजन करते हैं, क्या कहें, हमको चैन ही नहीं लग रहा था। कभी यदि सूख भी गया तो हाथ पकड़ करके और वनों में हमको मारता रहता। मैंने कहा आप स्वप्न में भी वही सब चिंता, यदि 24 घंटा तो वही दिन रात उसी। और हम लोगों को प्यार प्यार टाइम होती है ये सब देखिए, ये किस स्थिति में हम लोग भजन किसको पाते हैं। तो जब सखियों के जैसा करती हैं ठीक उसी का अनुसरण करते हैं। कौन करता है? जिसको लोभ है भक्ति का, ऐसा लोभ। अभी तो वैधि भक्ति के लिए हमें इतना डर नहीं है, ठाकुर जी को भोग लगा करके अच्छी अच्छी मिठाई अपने लिए खा ली और साधारण चीज बाहर की करती है। ऐसी सौभाग्य प्रवृत्ति साधारण लोगों में होती है। तो मतलब उसी के लिए प्रभुपाद जी ने कहा शालग्राम के द्वारा शालग्राम पर बादाम रख करके तोड़ना, ऐसी भी प्रवृत्तियां होती है। खूब सावधान रहो भाई, चाहे गृहस्थ हो चाहे जो भजन करता है उसको क्रोध वो होगा, सबसे अनबनी हो जाएगी, उससे भी अनबनी, उससे भी, इससे भी, सबसे अनबनी। तो फिर भजन क्या? सबने समभाव नहीं हुआ, सबसे विरोध ही रहा, तो कृष्ण और आख्या जी से भी विरोध हो जाएगा, क्योंकि उनके वो प्रिय लोग हैं। इसलिए ये सब तो दुम होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मद मोह सुनकर के कहने पर भी नहीं। आज जैसे मैंने कहा और आज ही निकाल दिया दिखाया, जैसे यदि भजन करना है तो एक बात कर, जिसे तुम्हारी शत्रुता है उसी के घर में भिक्षा मांगने के लिए जाओ, तो शत्रु के पास ही शत्रु का भाव छोड़ करके जाओ। घर से आए हो हमारे त्रिदंडी श्रीमद भागवत उपाख्यान में है, घर छोड़ करके बेचारा घर वाले निकाल दिए और वो अपने गांव में अपने घर में गया और अपने घर वाले गाली गलौज की पौछार उस पर कर और कहा जैसे ये फंड है। हम कहेंगे जैसे अपनी मैया को प्रणाम कराओ तो ऐसे भी नहीं जाए, क्योंकि मैया का भाव परिपूर्ण रूप से निकलता है। तो ये तो वैधि भक्ति का भी लक्षण नहीं है। तो रागांगा तो बहुत दूर की है, भजन बहुत दूर है, किंतु भगवान ने कृपा की है, कल आचे सहज भाव से हमारा नाम कर दो, चाहे अपराध से युक्त हो जैसे कभी हमारा ये भजन ही है, ये उत्साह देने के लिए। इसलिए जो इतना कर सकेगा तब इसके बाद में वैधि भक्ति के बाद में तब रागांगा, बिना लोभ के ये सब नहीं होगा। लोभ का कारण क्या है? लोभ का कारण हमको रसगुल्ला खाने का लोभ हुआ, क्यों? किसी ने खिला दिया बाई चांस, खिला दिया तो हमको लोभ हो गया। ऐसे ही कोई कथा ऐसी सुना दी और भगवान की कृपा से हमारा आधार ठीक है, संस्कार और हमको उसमें लोभ, इसका और कोई भी कारण नहीं है। किसी को किसी के सौंदर्य के प्रति लोभ हो जाता है, इसका कारण क्या है? कोई कारण
होगा,
अरे वो कोई अंधा है उसी से प्रेम हो, इस प्रेम का कोई कारण, प्रेम तो अंधा होता है। किंतु हाँ यदि कृष्ण के प्रति किसी प्रकार से लोभ हो जाए, इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण कुंज सेवा साध से ही पाए, से ही साध पाई थे आज नहीं को पाए, और दूसरा कोई भाई उपाय नहीं। कल हमने इसके संबंध में ये श्लोक जो चैतन्य चैतन्य में लिया है उसको हमने पाठ किया। विधुर अपि सुख रूप स्व प्रकाश अभिभाव खनोपि नहीं राधा कृष्ण ज्या रीतेश स्वा प्रवहति रसिपुष्टि चत विभूति रिवेश स्वयति न पर पदमाशांक सखी नंद। वो कौन सा ऐसा रसिक व्यक्ति होगा। जो परम ऋषि ऋषभ के जो गोपियां हैं, जो कि राधा के स्वरूप के समान उनका भी स्वरूप है, कृष्ण की लादिनी शक्ति है और राधा रूपी कल्पलता की किशल है, कोमल मधुर पत्ते और पुष्प है और मंजरी, इनके बिना राधा कृष्ण की रस की पुष्टि नहीं होती। ऐसे जो रसिक गोपियां हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है रसिक जो रस चाहने वाला है और इन गोपियों का आश्रय न करे, अर्थात तो जितने भी रसिक मात्र हैं, क्योंकि उनको लोग कुछ हो गया है, दूसरा नहीं। इसकी व्याख्या हमने कल कुछ अधिक रूप में की। सखिर स्वभाव एक अपंथ प्रथा, जिनको लोग हो गया उनके लिए ये बताया। ये भजन की अंतिम सीमा और भजन में सबसे बृहद रहस्य है, समझाने पर भी नहीं समझेंगे यदि कुछ आधार या संस्कार नहीं है, हजार समझाने से तो भी कुछ समझने की चेष्टा नहीं होता। सखी का स्वभाव एक अपत्य पथन, सखियों का एक ऐसा सुंदर और मधुर और रहस्यपूर्ण स्वभाव है जो अपत्य पथन है, जिसको कहना उचित नहीं। अपत्य माने क्या? कहने योग्य है ही नहीं है। और वो कथन, वो जो रहस्य है, कहने योग्य नहीं है, अपने से अपने सुनने योग्य भी नहीं है, इतना रहस्यपूर्ण वो चीज है। कभी कहते हैं जब ये नहीं कहेंगे तो ये विद्या ही लोग तक हो जाएगी, और जो इसके लिए योग्य व्यक्ति हैं उसके लिए वंचित रह जाएंगे। जो लोग रसज्ञ नहीं है उनको इसमें रुचि नहीं होगी, अजय बेकार का ये पाठ हो रहा है। और जो अधिकारी हैं कोटि कोटि में से उनको हजार, हमारा जितना खाद्य था आज हमें मिल गया, वो लोग हैं। आज जो नहीं है उनको अच्छा रुचेगा ही नहीं। तो एक आदमी के लिए केवल लिखा, लाखों में से केवल एक व्यक्ति है, व्यक्तियों के लिए जो इसके लिए जुड़े हैं उनके लिए लिखा, क्योंकि ये बात भी नष्ट होना डर था, जैसे अनाधिकारी लोग सुन करके उनका स्वभाव चरित्र नष्ट होगा, वो पतित हो जाएंगे और सुनेंगे नहीं, अनादर करेंगे, तो वो डर भी इनको नहीं रहा, क्योंकि अधिकारियों करते थे किसी को ये अच्छा ही नहीं लगेगा, इसलिए हमारा काम भी हो जाएगा। जिसके लिए कारण सनातन गोस्वामी कुरु गोस्वामी ने एक पत्र लिखा, यदि वो पत्र किसी को मालूम हो जाए तो भंडा खो हो जाने पर सनातन गोस्वामी को और जेल हो जाएगा, इसलिए वो भंडाफोड़ भी नहीं होना, और सनातन गोस्वामी वो जान भी जाए और पत्री भी पहुंच जाए तो उसमें क्या लिखा है?
मौ, गौ, ऐसे कुछ अक्षर लिख दिया, मधुपुरी
का ये सब लिख दिया अक्षर, ये लिखा जो मैंने लिखा जदुपुरी, कह उत्तर कोशला, केवल क लिख दिया। आज वो कोशला मैंने अयोध्यापुरी कहा ये सब नहीं लिया, केवल क लिख दिया, जो मैंने जदू, जदुपुर आज कहाँ है, दुर्योधन का वो वैभव कहाँ गया, रावण का वो सोने की लंका कहाँ गई, तो वो र लिख दिया। ऐसे ही सब लिख करके दे दिया। जब उनका ही वैभव नहीं रहा तो आप उस वैभव के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से चले गए, ये इसका मतलब। कोई भी नहीं समझा, सनातन गोस्वामी को पहुंचा, पढ़े देख करके एकदम विस्तृत हो गए, बस उसी दिन चलना चाहिए, बस उसी दिन व्यवस्था करके और गंगा में कूद गए, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उस जेलर को दी। साधु संत किसी को घूस नहीं देते, किंतु भगवान का भजन करने के लिए जरूरत होगी तो
जो भी नहीं करना वो भी करेंगे, झूठ बोल भी बोल देंगे, चोरी भी करेंगे भगवान के लिए। उनका भजन
स्वकार्यम धरे प्राप्त कार्य धन से,
इसलिए करें। गोपियों का एक अकथ एक रहस्य क्या, सब लोग अपना कोई भी काम करते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के, कोई भी काम। जैसे श्रीमद् भागवत में है वो दुख तेई सुखाय कर्मण्यारोहमानानां दुख तेई सुखाय, कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है दुख को अपने दुख को दूर करने के लिए और सुख पाने के लिए स्वयं को कोई भी काम करता है। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति आए हैं और मैं भी, कुछ सुख मिलेगा ना सुनने से, कुछ स्वार्थ है, अभी तो स्वार्थ है, जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे उस समय देखा जाए। एक महत् स्वार्थ के लिए तो जगत में जितने भी जो भी काम होगा, जो भी काम, उसमें किसके पीछे दो उद्देश्य रहता है, दुख दूर हो और सुख दूर। इस संसार में ब्रह्मांड में यही है, कोई भी काम करेंगे ठाकुर जी की सेवा भी करेंगे, इसलिए कि हमारा जन्म मरण से उद्धार हो जाए और सुख मिले, यही उद्देश्य से पहले भजन में प्रवृत्ता भी होता है। घर में कलह हो गया दिन रात खचखच, अच्छा ही नहीं मन लगा, चलो अब वृंदावन में चलें, मथुरा में चलें, ब्रज में चलें, भगवान का भजन करेंगे, जैसे दुख से कष्ट से माधुकरी कहीं से मिल जाएगी, भगवान तो भूखे नहीं रखेंगे, विश्वास करके आदमी से क्यों उस दुख से बाहर। पहला तो ये काम, और दूसरा जो उससे उन्नत है वो आते हैं कि हमको भजन करने से भविष्य के लिए सुख होगा और फिर जन्म मरण नहीं होगा, यही पहले होगा, इसी से वही भक्ति आरंभ होगी। लोग तो बहुत दूर की बात है, तो सब लोग अपना अपना सुख चाहते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी, स्वर्ग से ऊपर में भी दो प्रकार की वो होता है ना,
प्रेम से उत्तर
मुक्तियां,
प्रेम
और प्रेम सेवा, सुखाश्वर्य उत्तरा जो मुक्तियां होती है इसके लिए होती है, मुक्ति चाहते हैं इसलिए दुख न हो और उसमें सुख हो, इसीलिए मुक्तियां करते हैं। इसके बाद में तब तक भगवान के सुख के लिए आरंभ होता है, इसलिए जगत के लोग धारणा नहीं कर सकते। कितने लोगों को हमने सुना है आप लोग संसार छोड़ करके अपने स्वार्थ के लिए भगवान का भजन कर रहे हैं, वो समझ नहीं सकेंगे कि किस लिए ये भजन लोग कर रहे हैं। तो गोपियों का यह कथन थी, यह भाव अकथ्य कथन है कि कृष्ण स्वयं निज लीला नहीं सखी वन, हम लोग कृष्ण का भजन करके कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों क्यों कारण क्या, अब पूछो अपने से किस लिए तू भजन करना चाहता है और राधा कृष्ण को पाना चाहता है, क्यों कारण क्या है। बद्धावस्था में अपने सुख के अतिरिक्त कोई भले ही हम कह दें कल्पना करके कृष्ण के सुख के लिए ऐसा करें, अभी कृष्ण की सुख की अभी अनुभूति नहीं, बस अपना ही सुख समझिए, इसके बाद में पीछे गोपियों का कृष्ण से मिलने में उनकी कोई भी स्वार्थ नहीं है, यही अकथ्य कथन। गोपियों का खाना पीना श्रृंगार करना, कृष्ण से मिलना, कृष्ण की सेवा करना, जो कुछ है कृष्ण के साथ में बैठ करके हिंजोले में झूलना, इसमें गोपियों का तनिक विश्वास। मान लिया कि कृष्ण मैं हम लोग कोई गोपी हैं और कृष्ण ने बुलाया दिया आ जाओ हमारे साथ में बैठ करके झूले में झूलना है, कितना आनंद होगा हम लोगों को,
क्यों आनंद होगा तुम्हारा? इसलिए कि कृष्ण के साथ में बैठने का गौरव। कभी कभी आप लोग देखते हैं कोई बड़ा आदमी आ गया है, अरे बड़ा आदमी तो छोड़ दो हम ही हैं, मान लीजिए वहां पर खड़े हो गए, किसी के घर में गए तो अपने पास में बैठ, वो नीचे बैठ करके फोटो खींचते हैं, किस भी फोटो समझ नहीं लोग उठाते हैं कि नहीं फोटो, ये हमारे घर में ये फोटो रहेगा जब मैं महापुरुष के साथ में बैठा था या बैठा, इसी में भी सुख है। ये सब काम है, यहां तक कि कृष्णचंद्र जी कंदम्ब के वृक्ष के नीचे त्रिभंग ठाम से बांसुरी बजा रहे हूं और मैं उनको देख करके अत्यंत आह्लादित हो जाऊं, ये कृष्ण से वर मांगता, ये वर भी काम है। ये सब जितने ही काम है किंतु सूक्ष्म काम है, इसको समझ नहीं पाए। बड़े बड़े साधकों को भी देखा है, ये गुरु वैष्णव की कृपा से ये सब समझा जा सकता है, किंतु गोपियों ने कृष्ण के साथ उनकी जितनी भी लीलाएं होती हैं, तुम जो में हो चाहे जहां भी हो, ये सब कृष्ण के सुख के लिए होता है और कृष्ण उसको ग्रहण करते हैं, किस लिए? गोपियों के सुख लिए, अपने सुख के लिए, जैसे इन लोगों में नहीं है कृष्ण में भी नहीं है। ये समझ में हम लोगों को अभी नहीं आएगा, भजन करने पर तो हम लोग कुछ कुछ समझ सकते हैं। इसलिए ये तात्पर्य हुआ, गोपियों के साथ में कृष्ण की जितनी भी लीलाएं होती हैं उन लीलाओं में गोपिका का अथवा श्रीमती राधिका जी का अपने सुख की कोई भी लालसा नहीं। और वैसे कृष्ण में भी इनके साथ में जो विहार इत्यादि करते हैं, कृष्ण का भी कोई स्वार्थ नहीं है, ये अपथ्य कर, इसको समझना पड़ा था। कृष्ण सा राधिका लीला जी करा निजी सुख है के ताते पोथी सुख पाए। गोपियां कृष्ण सा राधिका लीला जी कर, जो गोपियां कृष्ण के साथ में राधिका जी का मिलन कराकर और दोनों को एक साथ में सेवा करके जो आनंद पाती है, वो आनंद कितना होता है उसी के लिए यहां पर बतला रहे हैं। यदि अपने से कृष्ण मिले स्वयं किसी गोपी से, उससे कोटि गुण सुख होता है राधा से कृष्ण को मिलाने। एक गोपी राधा कृष्ण को पंखे जल रही है और दोनों का रूप निहार रही है और देखते देखते एकदम तन्मय हो गए, प्रेम का ज्वार आया, प्रेम की एक लहर आई और वो डूब गई उसमें और हाथ से पंखा गिर गया और अपने आप ही वो गिरने को हो गया। थोड़ी देर में बस छट वो आया, पंखे को उठा लिया, ये धिकार है मुझे, ये आनंद के कारण मैं आज उनकी सेवा से वंचित रह, अपने को धिकार दे दिया। हम लोग कहते हैं जैसे ओ कितने आनंद की बात है जो आज पंखा भी हाथ से गिर गया उनकी सेवा। इसलिए कृष्ण से गोपियों किसी गोपी को मिलाने में या राधिका जी के मिलाने में इन गोपियों को इतना अधिक सुख होता है जो स्वयं कृष्ण से मिलने में वो सुख नहीं होता है। राधा स्वरूप कृष्ण प्रेम प्रेम कल्प होता है, सखी बन है तार पल्लव पुष्प पाता। राधिका जी का स्वरूप है क्या? कृष्ण प्रेम कल्पलता, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, प्रेम का सार अंश महाभाव, महाभाव की अंतिम परिणति मादन मोदन इत्यादि भाव है, दिव्योन्माद इत्यादि। ये राधा जी उसका स्वरूप ये श्रीमती राधिका जी, उनका भाव शरीर अंग प्रत्यंग श्रृंगार और जितना जो कुछ है वो सब कृष्ण प्रेम से ही बना हुआ है।
सखी गर्नुभएका पल्लव पुष्प पाता सखिया मुखी कुशलता कल्प एक कल्पलता से कल्पलता माने
जो कुछ कल्पना किया जाए सब पूरा कर देते हैं
सब कुछ उससे पाया जा सकता है जो कुछ भी कल्पना किया जाए वो सब कुछ पाया जाए किंतु ये स्वागतिक जी जिसकी कल्पना हम करते हैं कल्पलता है उससे कहा कि कृष्ण परम दे दो तो देगी कि नहीं वो नहीं दे किंतु राधा रूपी कल्पलता सब कुछ दे सकती जितनी इच्छाएं वो सबको वो पूर्ण कर सकती हैं ये तो सखी कौन हरता वो है कल्पलता बड़ी सुंदर आपने वो देखा होगा पेड़ों के ऊपर में अमर बेल एक होती है पीली पीली पीली
स्वर्ण लता
बिना जड़ की स्वर्ण लता कितनी मनोहर
बता भी नहीं कुछ भी नहीं जड़ भी
एकदम ऊपर में छा जाती है जड़ भी नहीं है कुछ भी नहीं है कैसे कैसे ऊपर में किंतु पेड़ों के सब रस को यहाँ तक कि पत्ते तत्ते सब पेड़ का सब सुखा गए यदि कुछ दिन उत्तर कर किंतु ये प्रेम कल्पलता ऐसी नहीं उसकी पुष्टि करके ऐसे ये परिमलता है गोपियां उसकी पल्लव पुष्प और पत्ते पल्लव माने किशल है नए नए कोमल जो पत्ते निकलते हैं और पुष्ट पत्ते और उसमें पल्लव पुष्प और मंजरी और फल भी रख लो ये सब ये गोपियां कृष्ण लीलामृत जरी लता के सिंचय है कृष्ण की जो लीलामृत है यदि लता को सिंचन कर एक लता समझ लिए उपमा के लिए लता के जड़ लता की जड़ में यदि पानी दिया जाए तो वो पानी उसमें जाकर के लता पुष्ट होगी हो रही है इसका प्रमाण क्या है
पत्ता उसको खिला रहेगा हरा
पत्ते उस पर इत्यादि से फट जाएगी इसका मतलब है जो सीखी जा रही उसी तरह से ये जो कल्पलता है स्वर्ण कल्पलता श्रीमती राधिका इसको कैसे सींचा जाएगा कृष्ण प्रेम के द्वारा कृष्ण लीला कथा प्रेम भी जैसे एक गोपी श्रृंगार रूपमंजरी भी श्रृंगार कर रही थी राधा श्रृंगार करते हुए गले में उनको श्यामंतक मणि पहना रहे श्यामंतक मणि पहनाते समय में राधा जी से कहती हैं आपको तुमको याद है श्यामंतक मणि के संबंध में कहा है अरे इसका जो मित्र है कौस्तुभमणि इसका मित्र है वो कौस्तुभमणि से मिलने के लिए सब समय लालायित रहता है और मिलते ही दोनों सरल हो जाते हैं और देखो इस पर प्रति छवि पड़ती है कृष्ण की किस पर श्यामंतक मणि और कौस्तुभ में किसकी पड़ती है तुम्हारी पड़ती है और दोनों उस गर्व से गर्वित होकर के परस्पर इतना वाद विवाद करते हैं लड़ते झगड़ते हैं जैसे तुम दोनों भी लड़ती झगड़ती हो और उसकी बातें सब जो बीती हुई बातें हैं सब स्मरण हो जाता है और वही सपा प्रधान मनी मन में बड़ी प्रसन्न होती है सोचती हैं ये गले का हार उसी के गले में था और वो सखी अत्यंत उनकी बातों को सुन करके एक एक श्रृंगार में इस सिंदूर की बिंदी देती है सखियां या उनको पैरों में अलता पहनाती हूँ या कोई भी श्रृंगार कर रही हूँ कुछ भी
पूर्व लीलाओं से उसका संबंध होने के कारण उसका स्मृति दिलाते हुए राधा जी को कहती है, राधा जी के कानों में जाकर के वो अमृत उनमें सींचता है और बड़ी उत्फुल्ल हो जाती है, कृष्ण से मिलने की तीव्र उत्कंठा हो जाती है और मधुर स्मृतियां पहले वाली सब जग जाती है। ये है लता को सींचना। कौन सींचता है? ये सखियां नहीं। जैसे राधा जी कह रही हैं श्यामला जी को, आज शुभ प्रभात हुआ, शुभ प्रभात है। क्यों शुभ प्रभात है? आपका उनसे मिलन हुआ, श्रीमती राधिका जी उठ करके और गले से लगा करके बैठा करके सखी साथ मिली हुई, आज शुभ प्रभात हुआ। आज आपके दर्शन से ही यदि हमारी इस कल्प आशा रूपी कल्प लता में कुछ फल लग जाए, उसके लिए वर्षों समय इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज तक फल नहीं लगे। सखियां सेचन भी कर रही हैं और लता पुष्ट भी हो रही है, पत्ते एकदम हरे हरे हो गए, उस भी इसमें आ रहे हैं, किंतु फल आज तक नहीं। श्यामला जी, अरे तुमको पता नहीं, तू अंधी है, तुमको पता ही नहीं, अरे फल तो कभी के पक चुके हैं और तुम खा भी गई है और फल के रस से तू रंग गई है, तो अभी तुमको पता नहीं। और ले जाए सब फर्श पर, ये राधा जी का सिंचन है। तो इससे क्या होता, राधा जी का सिंचन करने से कल लता सखियां पुष्ट होती हैं, अतः तो पत्ते पुष्प मंजरी, अतः तुमको आनंद। यदि पत्ते पुष्ट हुए तो लता भी पुष्ट होगी, अन्यथा यदि पत्ता और पुष्प इत्यादि पुष्ट नहीं हुए तो लता भी, एक कोई लता है उसके सब पत्तों को तोड़, हमारे यहाँ तुलसी लगी हुई तो बहुत से प्रेमी भक्त लोग हैं, भक्त में भक्तानी लोग, वैष्णवी लोग जो बाहर से आते हैं, जिनके घरों में तुलसी नहीं रहती तो वो सुगंध लेती हैं ऐसे पत्ते, एक एक पत्ता नहीं लेंगे। देखिए कोई नहीं देख रहा है तो वो पत्तों को डालियों को पकड़ करके ऐसे सरक लेंगे, जल्दी से ना, जल्दी करना है ना, ऐसा मत करो, आप लोग भी ऐसा ना करो, तुलसी जी को प्रणाम करो भाई, नहीं तो अपराध हो जाएगा। तुलसी जी को प्रणाम करो, प्रार्थना करो कि हे केशव, आपकी सेवा के लिए, आपके प्रिय के लिए, प्रिय सेवा के लिए मैं आपका चयन कर, बड़े प्रेम के साथ में एक एक पत्ता, पत्ते की जो डंडल होती है ना उसके साथ तोड़ो, मंजरी को लो, कोमल मंजरी, दो तरफ में कोमल कोमल पत्ते हैं, बड़े ऐसा तीन लोग सब डंडल का डंडल एकदम साफ हो जाए, कुछ दिनों के बाद में तुलसी जी सूख जाए, इसलिए ऐसा नहीं। इसलिए यदि पत्ता को तोड़ दिया ऊपर से नीचे तक तो पत्ता भी, पेड़ भी सूख जाएगा, इसलिए कहते हैं सखी गण है तार पल्लव पुष्प, बिना इनके रास नहीं हो सकता, बिना इनके इनकी लीलाएं नहीं हो सकती, पुरुष की पुष्टि भी नहीं हो सकती है, इसलिए ये जरूरी है इनका। वो सखियां हैं कौन? सखियां राधा जी ही हैं, अपने कायगुण से बनी हुई हैं वो, इसलिए अलग नहीं है। राधा जी जो जो गुण है, महाभाव स्वरूपा है, ये भी कम नहीं है, ये भी महाभाव स्वरूपा है, इनको भी ऐसा ही सच्चिदानंद में कृष्ण राधा जी की कलाएं, कलाएं मैंने अपने रूप के समान ही ये कला, कला मैंने ये सखियां सच्चिदानंद, इन सखियों को कम ना समझो राधा जी से। कृष्ण लीलामृत यदि लता के समीक्षा, कृष्ण की लीलामृत अभी जो जैसे तो एक उदाहरण दे करके हमने बताया, ऐसे लाखों विशेष करके हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि का रूप गोस्वामी की जितने श्लोक हैं सब इससे भरे पड़े, सब जितने भी लीलाएं हैं। चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, ये सभी का एक ही संदेश जी गोस्वामी का सभी के लिए का है। हमारे गुरु जी का देखो एक श्लोक, राधा चिंता निवेशन योगिता श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लिंग, कितने उच्च कोटि का ये श्लोक। ये उन्होंने अपनी आरती में मंगला आरती राधा कृष्ण के कितने सुंदर सुंदर भाव पिरोए हैं। क्या बाजे सुमधुर ध्वनि करे जतो साथी गण, साथी गण माने क्या, कोयल वो पपी है वो कुक्कुट, कुक्कुट भी वेद उच्चारण करती है हर्ष दीर्घ प्लुत स्वर से और अपने सिर को ऊंचा करके, ये सब लीला के परम सार। तो ये साथी गण की करे सुमधुर ध्वनि करती हैं, कैसे करती हैं, राधा जी की वृंदा देवी की इंगित पा करके, और
मंगल
मंगल श्रवण
बाजे
बाजे अथवा बहे
मधुर पूजन,
मधुर इनका पूजन जो है ये इनके कानों में प्रवेश करता है। इसके भी बहुत से अर्थ हैं, हजारों अर्थ है इसके, बड़े सुंदर सुंदर अर्थ महाप्रभु जी इसका आस्वादन करते। कृष्ण लीलामृत यदि लता के सिंचय निज सुख होते पल्लवाद्य कोटि सुख है। कहते हैं कि यदि लता को कोई कृष्ण लीला के अमृत से सिंचन करे तो कृष्ण उनसे जो मिलन होता है गोपियों का, उसमें जो गोपियों का आनंद होता है, उस आनंद से कोटि गुण भगवान कृष्णदास कविराज जी ने इसको थोड़ा और अधिक विस्तृत करके कुछ और बताया। इन्होंने ठीक इसके विपरीत अर्थ किया और अर्थ ये किया राधा जी को कृष्ण के मिलन में, जिन्होंने चैतन्य चेतामृत लिखा है उन्होंने ही गोविंद लीलामृत ग्रंथ लिखा है। इन्होंने जितने भी सुंदर रस के ग्रंथ उस समय में मिले थे सबका उन्होंने भाष्य और टीका कृष्ण कर्णामृत का की टीका इन्होंने ही की। सारंग
रंगदा,
रंग सारंग रंगदा, सारंग रंगदा माने
बिना
सारंग, ये जो बजता है ना
सारंगी,
सारंगी सारंगी नाम कैसे हुआ,
सारंगी
रंगी से हुआ। कृष्ण लीला में रंग है, तरंग है, रंग का तरंग उसको जो प्रकाशित करने वाली है
रंग,
इसलिए रंगदा उस रंग को, इसलिए सारंग माने सारंगी ऐसे पेपा पा खटता है वैसा नहीं, उस रंग को देने वाला गोविंद लीला में इसको बताया है। बहुत ही गोपनीय और रचना हम लोग तो गुरु वर्ग जानेंगे, जैसे इसके पास है ना तो मठ से बाहर कर देंगे, यदि हमारे गुरु पर यदि सुनेंगे ना जो ये गोविंद लीला पढ़ता है तो मठ से बाहर कर देंगे, अनाधिकारी होकर के चले। हम लोगों का जन्म सिद्ध उसमें अधिकार है ना, किंतु अधिकार होने पर भी जब समय होगा तब तो प्रत्येक जितनी भी लड़कियां हैं उनका जन्म सिद्ध अधिकार है पुत्र इत्यादि संतान उत्पन्न करने, किंतु समय पर ना, नहीं तो यही दोष हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अधिकार है कृष्ण की सेवा में, ये बात तो ठीक है, किंतु समय पर होगा, समय पाने पर अपक्व समय में ये सब चीजें दोषनीय होती है। इसलिए तसक्षासी राधिकाया ब्रजकुमुद विधो लादनी नाम शक्ति सारांश प्रेम वल्ल्या किसलय दल पुष्पादि तुल्य स्वतुल्य सीतायां कृष्ण लीला अमृत रस निचयई उल्लस्यान्ति अमुष्यान् जातो लासा सोसेका शतगुणमधिकं सन्ति जत् जन्न चित्रम।
राधिका जी की जो शक्तियां हैं इन्होंने सब कुछ लिखा रूप गोस्वामी के ऊपर में निर्भर रखा भक्त स्वामी सिंधु उज्ज्वल मणि और उनके जो दो नाटक हैं दान के लिए कौमुदी इत्यादि जितने भी उनके ग्रंथ है अलंकार पुस्तक इत्यादि सब पर निर्भर रख करके जी गोस्वामी के भी विचार लिए सनातन गोस्वामी के विचार लिए और सब लेकर के वृद्ध हो गए थे 84 वर्ष के दांत टूट गए थे दो एक दांत थे तो वो हिल रहे थे दांत हाले हाले निकाले हाथ हिल रहे थे और हाथ कांपते हैं
इतने बुढ़ापे में ऐसा दोष क्यों है
हाथ कांप रहे हैं शीर हिल रहा है इंद्रियां अब
शिथिल
हो गई है संसार की अब इस समय में कोई भी वासना नहीं रह गई असल चीज ये है और प्रेम से पुष्ट हो चुके हैं रूप सनातन रघुनाथ गोस्वामी सबके महाप्रभु के विचार राय रामानंद जी के स्वरूप दामोदर के विचार उनके हृदय में आ परिपक्व हो गए तब वैष्णव ने बहुत अन्य विनय किया तब उन्होंने लिखा नहीं तो लिख नहीं गए तब लिखा जगत के कल्याण के लिए लिखा बंगला भाषा में लिखा किंतु संस्कृत में इसकी टीकाएं हैं बतलाओ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लोग नहीं संवरण कर सके इस ग्रंथ को पढ़ने से और पढ़ करके देखा ये साधारण आदमी नहीं समझेंगे तो संस्कृत में उसकी टीका लिखी उसको समझेंगे तो ये ग्रंथ कैसा उपाधि है किसी से इसलिए कि साधारण लोग भी उनको थोड़ा सा भी जो समझे उसमें लोग साधारण के लिए सुलभ किया किंतु इसमें संस्कृत ही अधिक है और ऐसा लिखा है जो संस्कृत से भी कठिन यही जो बतलाया अकथ्य कथम ये जो बतलाया यही साधारण हम लोग कहने से या बोलने से समझ जाएंगे वो सचमुच में अकथ्य कथन ही ये सब प्राकृत तो है ही नहीं है अप्राकृत है और जब तक अप्राकृत यहाँ पर अपने आप कृपा करके हमारे हृदय में उदित नहीं होगा तब तक समझना भी पड़ा प्राकृत के सहारे हम लोग समझने की चेष्टा जैसे सूरज इधर उगता है पूरब दिशा में ऐसे ही वो भाव यदि हमारे हृदय में अब कैसे सूरज उगता है कैसे क्या होता है ये कैसे समझ तो सख्य शिराधिकाया ब्रजकुमुद बुधो लादनी नाम शक्ति राधा जी की जो सखियां हैं वो कौन है ब्रजकुमुद विधो लादनी शक्ति ब्रज कुमुद ब्रज की कुमुद जो है ये गोपियां हैं गोपरमणि ये कुमुद रात में खिलती हैं चंद्र के प्रकाश से प्रकाश में अमृत की कल्पना की गई है जो ही उसके ऊपर में पड़ता है वो कुमुदनियां खिल जाए ऐसे नहीं खिलेंगी सूर्य उदय होने में नहीं खिलेगी यदि चंद्र नहीं उदित होगा तो नहीं खिलेगी चंद्र के उदित होने से तो ब्रज की जो ये कुमुद है ब्रज कुमारियां रमणियां उनके लिए जो चंद्रमा है चंद्र है वो है कृष्ण चंद्र उनकी लादिनी शक्ति नाम की लादिनी नाम की शक्ति है ये कौन है ये शक्तियां सारांश प्रेम वल्लभ ये
राधिका जी के, राधिका जी हैं कल्पलता, सच्चिदानंदमयी हैं, रसमयी हैं, कृष्ण रस से ही, प्रेम से ही सारांश है, अर्थात प्रेम का सारांश है महाभाव। महाभाव ही अपने सारांश में मादन मोदन तक गया, विद्वन माद इत्यादि गया, उसके स्वरूप है ये राधा जी। उनके सार अंश, उनके भी अंश हैं। राधा जी जैसी हैं, वो स्व भी राधा जी की वो भी वैसे ही है, उनसे कम मत समझो। पेड़ में जो पत्ता होता है वो लता में, वो लता ही है, लता का अभिन्न अंग है पत्ता, पुष्प,
पल्लव
पल्लव इत्यादि सब अभिन्न अंग है। यदि इनको सब तोड़ दिया जाए तो फल नहीं लगेगा, सूख जाएगा। ऐसे ही है राधा जी की संगिनियां ये गोपियां हैं। स्वतुल्य राधा जी के, स्वतुल्य माने अपने तुल्य हैं। सीतायां कृष्ण लीला अमृत रस निचय उल्लसयन्ति अमुष्यन्। यदि राधा जी को उस प्रेम कथा से सींचा जाए तो ये सखियां अपने कृष्ण जो मिलते हैं उसमें जो सुख होता है उसे कोटि गुण सुख उनको होता है, गोपियों को होता है। जातो लाशा स्वसेका शतगुणम अधिक। यदि उनको, यदि पत्ते को सेचन किया जाए, वो पत्ता उल्लसित नहीं होगा। मंजरी को सींचा जाए, जैसे आम में मंजरी आई हुई है और वर्षा हो जाए और वो सब भूल जाए तो उसमें फल लगेगा, फल और फूल कुछ नहीं लगेगा। इसलिए अपने सेक से वो प्रसन्न नहीं है सींचने से, बल्कि कल्पलता के मूल में सींचने से वो ये सब अधिक प्रसन्न हो। संत जन्म चित्रम, इसमें कोई भी चित्र विचित्र बात नहीं है। इसलिए इन गोपियों का जो अनुगत होगा की सेवा करेगा वही राधा कृष्ण को जब तक सखी कृष्ण संगम नहीं माने मौन तथापि राधिका जतने करें संग। यदि कोई कहे कि ऐसी सखियां जो तत्त इच्छा वाली
है,
अविच्छा वाली, उनको कृष्ण से मिलन ही कभी नहीं होता है। बहुत से ऐसे लोगों को होता है कि ये खटिया किस्म की भक्ति है, यदि कृष्ण ही नहीं मिले तो भजन क्या हुआ। इसलिए हम तो गोपी ही होकर के भजन करेंगे, जैसे और सखियां ललिता विशाखा वैसे ही भाव से कृष्ण से मिलने के लिए हम साधन करेंगे। जीव का इसमें अधिकार नहीं है, स्वतंत्र सेवा में अधिकार नहीं है, अनुगतमयी सेवा में ही अधिकार है जीव, क्योंकि वो अंश है तटस्था शक्ति जात, इसलिए स्वतंत्र। किंतु वो स्वतंत्र से भी अधिक उसमें आनंद है उस सेवा में, किसको, कृष्ण को और इनको भी। नाना छले कृष्ण प्रेरी संगम कराए, आत्म सुख संग है ते कोटि सुख गुण सुख पाए। राधा जी इनको जत्न करके कृष्ण से मिला देती है, उनकी सेवा का सुयोग देती हैं, उनकी सेवा स्वयं भी ग्रहण करती हैं और राधा कृष्ण की भी सेवा ग्रहण कराती हैं, और उससे उनको जो कृष्ण से मिलन उनका है उससे भी लाख गुण उनको आनंद मिलता है। जैसे किसी का कोई बच्चा हो और उसको खूब स्नेह कर दिया जाए तो उसकी मैया को और भी है या पिताजी को उसको अधिक आनंद होता है। यदि मान लिया कि कोई बड़ा ऑफिसर है, उसके अर्दली को खूब प्रसन्न करो, खिलाओ पिलाओ खूब ये कर दो, तो वो अफसर भी अपने आप प्रसन्न हो जाता है ऐसे। और यदि स्वार्थी होगा तो नहीं होगा, तो कृष्ण में तो स्वार्थ है नहीं। अन्य विशुद्ध प्रेमे करे रस पुष्ट, तासबार प्रेम देखी कृष्ण है तुष्ट। इन गोपियों में और राधा जी में कोई भी स्वार्थ की गंध नहीं है। हमारे प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ स्वार्थ का गंध होता है। एक राजनीतिक लीडर कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये जनता के लिए इतना हमने त्याग कर दिया और त्याग करके मैं राष्ट्रपति बना हूं केवल जनता के सुख के। अच्छा बात ये ठीक है, चाहे राजेंद्र बाबू हो जो आदर्श राष्ट्रपति थे हमारे भारतवर्ष, तो भी उनको जो इतनी बड़ी भारी गरिमा मिली, राष्ट्र उनके एक ऑर्डर पर चलता है, ये कितना बड़ा भारी स्वार्थ है। किंतु वहां पर नहीं है, इसी की कल्पना नहीं हो सकती। उस जगत में ऐसा कोई भी स्वार्थ नहीं है, भजन में कोई स्वार्थ ही नहीं है। कृष्ण ने देखा न राधा जी में अपना स्वार्थ है, न इन गोपियों में स्वार्थ है, किंतु कितना प्रेम उछल रहा है, दोनों होड़ लगी हुई है, दोनों परस्पर परस्पर। गोपियां चाहती हैं राधा जी और कृष्ण का सुख, और राधा जी क्या चाहती है, कृष्ण को अधिक सुख देना। अरे हमसे तो सब समय मिलते हैं, उन गोपियों से मिला दें तो कृष्ण को अधिक सुख होगा, इसलिए सब समय कृष्ण की सुख ही वांछा होती है। इसलिए दोनों के सुखों को देख करके प्रसन्न होती है, और ऐसा देख करके कृष्ण को बड़ा भारी मिला। यदि दोनों में विवाद हो जाता ना, लड़ाई होती, तो कृष्ण को आनंद होता, वो अपना सुख चाहेंगे, वो अपना सुख चाहेंगे। एक बहन थी, उसकी शादी एक बड़े धनाढ्य घर में, बहुत धनाढ्य घर शादी उसकी, 10 वर्ष निकल गए उसको कोई संतान नहीं। उसकी एक बहन थी, उसने सोचा कि हमको तो पुत्र तो हुआ नहीं, पति भी उसको बहुत स्नेह करता है, किंतु 10-20-15 वर्ष निकल गए कोई भी संतान ही नहीं। उसने सोचा कि अपनी छोटी बहन से इसकी शादी, छोटी बहन भी आ जाएगी, दोनों मिलजुल करके रहेंगी, उसको संतान होगी, हम भी सुखी रहेंगे, वो भी सुखी रहेंगे। वो आ गई और उसको एक कुछ दिनों में ही पुत्र पैदा हुआ, और पति उसको अधिक स्नेह करने लगा, और बड़ी को ये सुहाता नहीं, और छोटी भी चाहती कि हमारे ये सुख में बाधा है, इसको भी निकाल दे, और बड़ी वाली चाहती जैसे ये देखो तो हमने शादी कराई और ये हमारा विरोध करके हमको घर से निकाल रही है, अब मतलब दोनों में प्रेम खूब रहेगा और पति भी प्रेम रहेंगे, कहीं ये दोनों में अब तो कलह होने लगा। अच्छा भाई अब इसके लिए दूसरी जगह कोई पास नहीं, तो ये मरेंगे, तो पीछे वाली को तो निकालेंगे नहीं क्योंकि उसको लड़का है, दूसरे वाली को बात होकर इसी तरह से जगत में ऐसा है। किंतु वहां पर ऐसा नहीं, वहां पर कोई स्वार्थ ही नहीं है, स्वार्थ का कोई सौदा नहीं, इसलिए कृष्ण भी प्रसन्न है और ये भी प्रसन्न। कभी कभी मान एक होता है जो प्रेम का एक एक तरह से विवर्त है, कृष्ण को उनके मनाने में भी आनंद है। सहज गोपी प्रेम कितना बजा,
5 मिनट बाकी
है। सहज गोपी प्रेम नहीं प्राकृतिक, भाई ये सब लोग समझ लो, ये अभी जो बातें हो रही इस जगत की बातें नहीं है, और इस जगत का जो कोई व्यक्ति है तो मत सुने, उस जगत का यात्री कोई हो और वहां जाना चाहता है तो उसके लिए ये तो परिचय कुछ ले करके जाना अच्छा, उनके लिए तो ठीक है, और जो इस जगत में रहना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये सब नहीं। उस जगत के लिए यात्री हो और वो सोचता है कहां जाकर के ठहरेंगे, क्या करेंगे, वहां का पूरा पता इत्यादि ले, उन लोगों के लिए इसकी आवश्यकता। गोपियों का प्रेम पहले समझे प्राकृत नहीं है, ये कैसे समझे ये प्राकृत नहीं है, अभी यदि हम सुनेंगे ना तो काम की उद्दीपना होगी, इसलिए जगत के लोगों को इसको सुनने का मना नहीं, नहीं प्राकृत काम, प्राकृत काम नहीं है, काम क्रीड़ा साम्यता वही कामना, दोनों में कुछ समानता है। महाराज वो कालिदास किनके दरबार में, विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास राज कवि है, बड़े व्युत्पत्त मति के हैं, माने तत्क्षणात उत्तर देने वाले। उनके यहाँ एक तरबार लगा हुआ था, जब एक ऑफर टाइप का व्यक्ति आ गया कपाली जैसा और आकर के कहने लगा, हमारे हाथ में ये दो फूल हैं, किंतु एक है नकली एक असली, अब आप लोग ये निर्णय दीजिए ये कौन असली है कौन नकली है। जो नकली था वो असली से भी अच्छा सुंदर। अब वो लेकर के बैठा रहा और कहा, जैसे आप खुद बतलाइए या आपके जितने पंडित हैं बराह मिहिर और कौन कौन,
कालिदास
नव जोगिंद्र है ना सर,
नवरत्न
कालिदास, बाई चांस उस समय में थे नहीं, खड़ा आने में विलंब हो गया था, तो वो पूछा जैसे दोनों में कौन असली है। अब कोई माथा सिर खुजला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं जा रहा, दोनों एक एक से सुंदर है। थोड़ी देर में कहा जिसे यही नवरत्न है, ये सब धिकार है, ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर मैं अब जा रहा हूं, कम ये इनके दरबार में नवरत्न नहीं है, ये सब गोबर गणेश है। जब जाने लगा इतने में कालिदास महाराज ने कहा, महाराज आप एक मिनट और बैठिए, जब इतना बैठे हैं तो हमारा एक और सभासद है, ये इसका भी कुछ जान ले। तो महाराज ने स्वयं ही कहा, महाराज भाई आप बतलाइए तो दोनों में कौन सा असली है कौन सा नहीं, तो ये आप लोग इतना भी नहीं समझ रहे हैं, अरे जिस पर मक्खी बैठ रही है वो असली है और जिस पर मक्खी नहीं बैठ रही है वही तो नकली है।
बागीचे के पास रख दिया, बागीचे के पास रखा जिसमें मधुमक्खी बैठा वाली असल है या नकली,
एक पर मधुमक्खी बैठ गई और एक पर मक्खी नहीं बैठी, मधुमक्खी कहाँ बैठेगी, जहाँ पर मधु और रस है वहां पर बैठेगी, सुगंध है उसमें भी सुगंध आर्टिफिशियल लगा दिया था, किंतु रस कहाँ से लगाएगा, मधु कहाँ से, पराग है वो कहाँ से लगाएगा, इसलिए वो सहज उन्होंने बदला। कहा किस विषय में कह रहा था, हाँ प्राकृत और प्राकृत ने, अप्राकृत और वो जो काम है गोपियों का कृष्ण से मिलना और हम लोगों का, दोनों में एक समानता, जैसे फूल में वो दोनों फूल एक ही समान थे, नहीं समझा जाता है कि असल फूल कौन है नकल फूल कौन है, किंतु असल और नकल का जिनको पहचान है अनुभूति है वो समझ जाए। इसलिए जो भक्ति स्वामी सिंधु इत्यादि के ज्ञाता है, ज्ञाता ने अनुभवी है, वैष्णव की सेवा की है तन मन से और उनके हृदय में अप्राकृत रस का थोड़ा सा भी आभास आया है तो वो तो समझ जाएंगे ये प्राकृत है ये अप्राकृत, और बाकी सब लोग काम में भी है। इसलिए कह रहे हैं सहज गोपी प्रेम, गोपियों का प्रेम सहज है, उनकी समाधि भी सहज है, उनका सब कुछ सहज है, नहीं प्राकृत काम, प्राकृत काम नहीं है। जब काम समाप्त हो जाएगा, मन की वृत्ति नहीं है ये भाव, व्यतीत भावना वर्त जग चमत्कार भार रूप
जल्दी
सब जले बाढ़ते
बाढ़,
जब वह अप्राकृत रस यहाँ पर उपस्थित होता है उदय होता है तब उसकी अनुभूति होती है। इसलिए हम लोग अभी प्रार्थना करेंगे, साधन भजन करेंगे, कृष्ण और गोपियों की, ब्रज की, गोवर्धन की, जमुना जी की, वृंदा जी की, योग माया की, ऐसे सब उपासना करते करते वो लोग प्रसन्न हो जाएंगे, तब हम लोग कुछ समझ सकते हैं कि काम और प्रेम में क्या। अभी हम लोग काम को कुछ अनुभव कर सकते हैं प्रेम को नहीं, इसीलिए कहते हैं काम क्रीड़ा साम्यता पति कामना, असल में काम नहीं, काम किसको कहते हैं, ये प्रेम से भी अधिक बढ़ करके है। जगत में ये शब्द नहीं है, ये शब्द है अप्राकृत जगत का, ना? जैसे माया, माया जोग माया का नाम ही माया है, किंतु इस जगत में जोग माया का कोई भी परिचय नहीं, इसलिए जड़ माया को माया हम समझते हैं। माया नाम प्रेम का है, प्रेम कहते हैं स्नेह को हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसका नाम है माया। जोग माया इसकी अधीश्वरी है, इसलिए उसको माया कहते हैं, किंतु उसका परिचय इस जगत में नहीं है। इसलिए माया कहने से क्या, ये त्रिगुणात्मक जो माया है सतरजतम गुण वाली जो जीवों को बांधती है, इसी का परिचय इस जगत में देखते हैं, इसलिए माया कहने से इसी का बोध। इसी तरह से प्रेम गोपालाम काम प्रथम इतुद्धो आदयो अपेतम वाच्छन्दिह। इसलिए उद्धव इत्यादि भी इस प्रेम की वांछा करते हैं भगवत प्रियाओं की जो गोपियां हैं उनकी, इस पवित्र काम को अपराप्त काम को प्रेम को ये चाहते हैं, इच्छा करते हैं और उनके चरणों में इसीलिए प्रणत होकर के भिक्षा करते हैं। फिर काम में और प्रेम में क्या अंतर है इसको बतलाएंगे हम लोग कल आज तक।
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरगतिषे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्कृते तत्र कञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुकृते प्रणमामि हरे आदेविका कुम्भरगदगदयाद्यवाचा जाचे निपत्तभूमि दण्डवतो दुःखकरति अस्य विषादमभिदर्शयित्वा गन्धर्मिके निजगणीगणनम् अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जर्जञ्जालुतरोचसंविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि दशद्रामाभिरामोदरं हराथास्कन्दनिवेशितो गर्भजं ध्यानेन तामो भक्त्यापि विघ्नापराधे मातरङ्गमध्ये कृपामयुतां शरणं प्रपन्नं वन्दे नमस्ते चरणाय राधायै कदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय यन्त्रप्रजन्तमनुते तमते कृष्ण द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया सर्वोऽग्ने तं सर्वभूतविजयं मुनिमान् तवैवास्मि नदीमान् त्वया विना इति विज्ञायराधे त्वं नय मां शरणं
नारायण और महाप्रभु जी का संवाद। राधा कृष्ण प्रेम तत्व इत्यादि बतलाने के बाद में और बतला रहे हैं कल से तो वृंदावन में राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं और गोपियां जो मधुर रस से उनकी सेवा करती हैं ये सेवा सर्वोत्तम है, यही साध्य सार है। इसको पाने का क्या उपाय है महाप्रभु जी ने पूछा, इसलिए वो बतला रहे हैं। एकमात्र गोपियों का अनुगत ही इस रस में प्रवेश का अधिकार दे सकता है। उसमें एक बतलाया कि ये गोपियां श्रीमती राधा के प्रेम कल्पलता के फूल पल्लव और पुष्प, राधा के सुख में सुखी, राधा के दुख में दुखी होता, इनका सुख और दुख दोनों ही प्राकृत नहीं है, न ये गोपियां ही प्राकृत है, न इनका सुख और दुख विरह और मिलन और इनकी कृष्ण प्रेम सेवा ये सभी अप्राकृत है, किंतु लोक के समान होने के कारण, लौकिक सद्बंधु भाव होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियां प्राकृत थी, कृष्ण भी प्राकृत थे, उनके प्रति प्रेम भी प्राकृत, ऐसा प्रतीति होती है। किंतु जो प्रेम तत्व को और ब्रज तत्व को उपासना तत्व को जानने वाले हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं, इस विषय में सावधान ये जगत के लोग कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं कि केवल मात्र कृष्ण ही काय सुख चाहते, अपने लिए कुछ सुख नहीं, या कृष्ण गोपियों के लिए ही केवल सुख चाहते हैं अपने लिए नहीं। ये कल्पना करना भी बड़ा कठिन है, ये समझ संसार में ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं स्वसुख प्राप्ति की लेश गंध भी किसी न किसी रूप में जरूर करता है, किंतु वहां पर तो बात दूर। यहाँ साधक लीला में भी इसका तनिक गंध नहीं लगता। यहाँ पर तिकान क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य शरीर में तनिक भी आसक्ति नहीं है, देहात्म बुद्धि नहीं है, देह में आत्मा की बुद्धि नहीं है, साधक अवस्था में नहीं, तो सिद्ध अवस्था की तो बात ही है। इसलिए गोपियों के और गोपियों के प्रेम को कोई व्यक्ति ऐसा ना समझ ले कि लौकिक, नहीं तो थोड़ा सा भी लौकिक भाव होगा तो उसमें काम उत्पन्न होकर के उसे रसातल में पहुंचा दे। इसलिए कल हमने बताया था गोविंद लीलामृत का श्लोक लेकर कि ये गोपियां राधा जी के स्वरूप के अनुसार में सचिदानंद नहीं, यदि उस लता को प्रेम से सिंचन किया जाए तो पत्ते और पुष्प सभी प्रफुल्लित हो जाए। यहाँ तक कि उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये भी बताया, गोपियां कृष्ण जब राधा जी से मिलते हैं गोपियों को बहुत ही सुख होता है, और यदि राधा जी अपने प्रयत्न से गोपियों को कृष्ण से मिलाती हैं तो राधा जी को अपने मिलने से भी उनको अधिक सुख होता है गोपियों के संग मिलाने से। राधा जी कृष्ण के साथ में मिलती हैं और राधा जी गोपियों को कृष्ण से मिलाती हैं, उसमें कृष्ण से गोपियों को जो मिलाने का सुख है राधा जी अनुभव करती हैं अपने सुख से लाख गुना अधिक कोटि गुण, आत्म सुख संग रहते कोटि गुण। अन्योन्य विशुद्ध प्रेम, इन दोनों में प्रेम है गोपियों में और उनमें राधा जी और कृष्ण के प्रति भी प्रेम, इसे देखकर के कृष्ण को बहुत ही आनंद हो, इन दोनों में भी प्रीति है। दासवाद प्रेम देखे कृष्ण तुष्ट है, उनको देखकर के कृष्ण को बड़ा भारी आनंद होता है। सहज गोपी प्रेम नहीं प्राप्त सामने तारी काम, कल मैंने बताया जैसे माया शब्द का जैसे जोग माया का ही यथार्थ में परिचय पाया जाता है, किंतु इस जगत में जोग माया का परिचय लोगों को नहीं है, इसलिए त्रिगुणात्मिका माया को ही माया कहने से समझ लेते। उसी तरह से काम यह अपराधिक जगत का शब्द है, किंतु लोग इसको नहीं जानते, इसलिए काम का अर्थ स्वार्थ में लगते, किंतु यथार्थता में काम गोपियों के प्रेम का ही नाम काम है। निजेंद्रिय सुख कामेर तात्पर्य, काम माने कामना, अपने इंद्रियों के सुख के लिए जो कुछ किया जाता है उसका नाम है काम। हम अपने सुख के लिए जो कुछ भी करते हैं, ठाकुर जी की सेवा भी अपने सुख के लिए करते हैं तो ये काम हो जाए। अपने लिए जो कुछ भी रसोई भी बनाते हैं, खाते पीते जो कुछ करते हैं, ये सब का नाम है काम। और कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव पर, और जो क्रिया कृष्ण को सुख देती है गोपियों की, ऐसे समस्त क्रियाओं का नाम प्रेम गोपी भाव पर। गोपियां जो कुछ भी करती हैं उनका सोना चलना फिरना घूमना श्रृंगार जो कुछ भी है वो सब कृष्ण के प्रीति के लिए होता है, यह समझना बड़ा कठिन है क्योंकि हम लोग को धारणा नहीं हो सकता। हम लोग का जो कुछ होता है अपने प्रीति के साधक साधन करते 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 जब कुछ उच्च भूमि पर पहुंचेगा तब इस चीज को समझ सकता है। हमारे रूप रघुनाथ जी ऐसा ही करते थे कृष्ण की प्रीति के लिए, महाप्रभु जी की प्रीति के लिए, सब कुछ उनका उनके लिए। अब इसी का प्रैक्टिस हम करेंगे गुरु वैष्णव के यहाँ, जो कुछ भी करेंगे गुरु की प्रसन्नता के लिए, तब वो धीरे 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 अभ्यास होते होते उस चीज को हम समझ सकते। वांछा नहीं गोपिका कृष्ण सुख दीते करे संगम बिहार, उनका श्रृंगार इत्यादि कृष्ण से मिलना जो कुछ है कृष्ण के सुख के लिए। इसी का श्रीमद भागवत से गोपी गीत का एक श्लोक यत्ते सुजात चरणं बहुहं तनेषु भीता सनै प्रिय दधि महि कर्कशेषु तेनात्मन अटसि तदव्यतेन किंचित् पूर्वाद भी भ्रमति भेद भवदादि शांत। इसका अर्थ बहुत गूढ़ है, संक्षेप में हम लोग साधारण रूप में इंगित रूप में मैं इसका वर्णन। गोपियां कहती हैं कि हमारे अंग कर्कश आपके चरण बहुत सुकोमल है, यत ते जिससे ते सुजात चरणं बहुहं तनेषु, जिस प्रकार सुंदर सरोवर में सुजा अत्यंत सुंदर सरोवर में जमुना में कोई कमल लाल कमल विकसित हो तो उसमें सुगंध उसमें मनोहरत्व स्वरूपत्व और उसमें सुकोमलत्व और उसमें शीतलत्व ये सभी चीजें उसमें रहती।
सुकुमार जो सुगंध
इसी तरह से आपके चरण कमल सुजा अत्यंत सुंदर रूप से कमल जड़ चीज है किंतु आपके चरण कमल और आप जड़ नहीं इसलिए उससे भी कोटि गुण अधिक इन सब गुणों में है। अत्यंत सुकुमार अत्यंत सुंदर सुगंध युक्त अत्यंत सुशीतल अत्यंत मधुर आकर्षक ये सब गुण कृष्ण के चरण कमलों में है। गोपियां कहती हैं कि तेना तवसी अटसी तद व्यथते न किंचित, आप इन सुकोमल चरणों से आप पृथ्वी पर जो भ्रमण करते हैं जिसमें पृथ्वी के कंकण कांटे कुछ तिनके और अंकुर अंकुर माने किरणों के अंकुर तो क्या लगते नहीं है न व्यथते, क्या आपको इसे व्यथा नहीं होती? इसीलिए धीर भव जासुकां कुर्बाद भी भ्रमति, हम लोगों की मति भ्रमित हो रही है। क्या भ्रमित हो रही है? कि लगते नहीं है कि लगते हैं? अच्छा यदि लगते हैं ये उनको जाने में चलने में फिरने में तो कृष्ण क्यों जाते हैं? यदि कांटे कुछ लगते हैं कृष्ण को ये चुभते हैं तो जिसके पैरों में चुभेगा उसे कष्ट होगा तो जाएगा क्यों वहां? तो कृष्ण को यदि वहां पर चुभता ही है पृथ्वी पर तो फिर वो कृष्ण को लगता नहीं और लगता है तो जाते क्यों है? फिर कहते हैं उसके उत्तर में सोचती हैं भ्रमत माने घुमराह स्थिर उत्तर नहीं करते फिर सोच रही है पृथ्वी जी जहां जहां कृष्ण चलते हैं वहां पर कोमल गलीचे से है जैसा अपने जीव को वहां पर रखे। कृष्ण के चरण कमल जैसे हैं कोमल उसके लिए उपमा देकर के बतला रहे हैं जिसका जैसा संग होता है ना ऐसा ही वो बन जाता है। आपके चरण कमल सुकोमल है इसलिए आपके
चरणों के संपर्क से वो कांटे कुश और कंकड़ियां भी रबर जैसी अत्यंत सुंदर सुकुमार बन जाती है। नहीं तो जरूर होता है ऐसा। फिर कहती है जे नहीं शायद ये बात ठीक है, कृष्ण हमको दुख देना चाहते हैं और उस दुख को अपना महान सुख मानते हैं, तो हमको दुख देने के लिए एक बात की जरूरी है। यदि हम लोग दुखी हैं तो कृष्ण को दुख होगा, आप कृष्ण को जो दुख होगा तब हमको दुख होता है। इसलिए कृष्ण पहले अपने को दुख देते हैं, जैसे जब कृष्ण का दुख देख करके ये हम लोग दुखी हो जाए, इसलिए पहले अपने को दुखी बनाते हैं। कैसे? अच्छा तो गोपियां जैसे दुखी हो जाए, कैसे दुखी होंगी? हमारा दुख देकर। अच्छा कांटे पर चढ़, कांटे चुभेंगे, कंकड़ी गड़ेगी, चुभेगी, मैं ऊहा करूंगा, तो देख करके गोपियां बड़ी दुखी हो जाए हमसे सैकड़ों, इसलिए ऐसा ही करना। दुख थोड़ा सा अपने स्वीकार। बंगला में कहावत है, दूसरों का यात्रा भंग कर लिया अपना नाम काट करके खड़े हो जाते हैं रास्ते में, जिस नकटे को देखा यात्रा हमारी खराब हो तो अपना नाक आगे काट ले। ऐसे ही कृष्ण हम लोग को दुख देने के लिए अपना भी कुछ थोड़ा सा दुख स्वीकार। दूसरी बात, हमें दुखी देख करके कृष्ण को महासुख होता है, इसलिए हम जैसे दुखी होंगी ऐसा ही उपाय। इस तरह से स्थिर नहीं कर पा रही हैं, कुछ स्थिर ही नहीं कर पा रहे हैं, ये कृष्ण जो कांटे कुशों में जो घूम रहे हैं इनको दुख होता है कि सुख होता है, कुछ स्थिर नहीं कर पा रहे। इसके लिए कहते हैं हमारे अंग अत्यंत कठोर हैं, हम बड़े प्रीति के साथ में धीरे धीरे उनसे चरण कमलों को अपने अंगों पर हम रखती हैं, इसलिए डरती हैं इनको कहीं कष्ट न हो जाए, और उन्हीं चरणों से कोमल चरणों से ये पृथ्वी पर ऐसे कठोर स्थान में चलते हैं जरूर इनको कष्ट हो, इसलिए गोपियां अत्यंत दुखित होकर के स्थिर नहीं कर पाती। क्यों कहते हैं? चित्त भ्रमित हो गया, किसलिए? चित्त कृष्ण को दर्शन करके उनको दुख से और स्थिर में पागल सी हो गई है। ब्रह्मा से प्रार्थना करती है, ब्रह्मा जी हम प्रार्थना कृष्ण को सुख देना हम चाहते हैं, इसलिए उनके श्री चरण कमलों को अपने हम अंगों पर धारण करना, इसलिए हमारे अंदर खूब सुकमल हो जाए, किंतु कृष्ण से तो इससे सुख होगा नहीं, इसलिए कहती है अब हम क्या करें? उनका सुख चाहती है किंतु उससे उनको दुख होता है, अब हम स्थिर नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके रहस्य बड़े गुण हैं, साधारण रूप में इतना ही समझिए।